بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الله ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے. سارے عالم کے اسباب اور دنیا کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور سارے لوگوں کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں، اور اللہ کے ایک اشارے میں سارے عالم کی پیداوار ہے. ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. وہ اللہ جو لاکھوں ماہوں کو رحم دلی عطا فرماتے ہیں اور بہترین خوبصورت لوگوں کو خوبصورتی عطا فرماتے ہیں اور بہترین دماغ اور عقل والوں، سائنسدانوں اور علماء کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، تو علم کی انتہا اور خوبصورتی کی انتہا اور رحم دلی کی انتہا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں ہیں. اور اللہ بہت قدردان ہے، اللہ بہت مہربان ہے. ایک ایک کے بدلے 70 نیکیاں دیتے ہیں، ایک عمل کے بدلے 10 اور 70 اور اس سے بھی زیادہ کا وعدہ ہے. ہم جتنی بار اللہ کا ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارا ذکر فرماتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں. اللہ کی طرف سے ساری عمر میں ایک مرتبہ یاد کر لینا کافی تھا، لیکن بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد فرماتے ہیں. صبح شام اللہ کی طرف سے بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، مختلف نعمتیں ملتی رہتی ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کسی بندی کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی توفیق دے دے. جب آدمی کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے جس میں انہوں نے کثرت ذکر کی ضرورت کے بارے میں ارشاد فرمایا. فرمایا کہ شریعت کی نظر میں علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اور نالج وہ معتبر ہے جس سے خشوع و خضوع اور تقوی اور آخرت کی فکر اور حساب کتاب کی فکر اور دنیا و ما فیہا سے زہد اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، اس چیز کو کہتے ہیں کہ علم، اس کو نالج آ گیا. مشہور حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور ترجمے میں اردو میں مفہوم ہے، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کو دیکھنے والے ہیں. اور اپنے نفس کا حساب لے آدمی اور تقوی اختیار کرے. قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یعنی تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ صادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ایک آدمی اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی یاد سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قرب سے نوازیں گے، اپنے اتنا قریب فرمائیں گے، قیامت کے روز اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ دوسرے لوگ قیامت کی پریشانی سے اور دھوپ سے، سختی اور پسینے سے پریشان ہوں گے. اللہ کا دھیان اور اپنا حساب لینا اور بزرگوں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور ذکر میں خوب ترقی کرنا، اس سے علم اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے. یہ فرما رہے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے جامعہ رشیدیہ کے، اور ہزارے علماء ان کے شاگرد. فرمایا کہ اس سے علم میں ترقی ہوتی ہے اور تقوی خشوع اور اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس لیے کثرت ذکر کا حکم دیا گیا. قرآن شریف میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام ان کی تسبیح بیان کیا کرو. دوسرے اعمال تھوڑے تھوڑے وقت کو بتائے گئے, یہ اتنے ٹائم کرنا, یہ پانچ ٹائم کرنا, مہینے میں اتنے دن ایک دن کرنا, یہ سال میں اتنی مرتبہ کرنا. لیکن جب ذکر کا نمبر آیا تو فرمایا کہ اس کو خوب کرنا, ہمیں خوب یاد کیا کرو, کوئی لمٹ نہیں لگائی. تو ذکر اللہ اکبر, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز, وہاں پر کوئی لمٹ نہیں لگائی. نہیں فرما رہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو یاد کیا کرو. ایک جگہ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اپنے رب کی یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ, اور زور کی آواز کی بنسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام, اور غفلت والوں میں سے مت بنو, غفلت والوں میں سے مت بنو. اللہ اکبر. قرآن شریف میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا, ایسی کتاب ہے جو باہم آپس میں ملتی جلتی ہے, بار بار دہرائی گئی ہے, جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن اور جسم کانپ اٹھتے ہیں, اور پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ. قرآن شریف میں سجدے کی آیات ہیں 14 جگہ, ان کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے, اور آیات پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت آ جائے گا. تو ان کا ترجمہ دیکھیں کیسے کیسے مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں. خشوع, خضوع, عاجزی کے ساتھ گر جانا, روتے گڑگڑاتے ہوئے, اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی. تو آج وہ آیات کہیں کسی مجلس میں یا تراوی میں کہیں پڑھی جاتی ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو آیت کا مضمون دیکھو, اور دیکھو کہ پوری مسجد میں ہزاروں کے مجمع میں کسی ایک آدمی کے اوپر بھی وہ والی کیفیت طاری ہوئی جو اس کے اندر بتائی گئی تھی, کسی ایک آدمی کے اوپر بھی وہ حالت آئی جو اس آیت کے اندر بات ہو رہی تھی. اللہ اکبر. تو شیخ فرماتے ہیں کثرت ذکر اور اللہ کے دھیان مراقبے سے ایسی رقت قلب طاری ہو جاتی ہے, یعنی رونا دل کا, کہ اپنے محبوب اللہ کی باتیں سن کر ان کے دلوں پر زلزلہ آنے لگتا ہے, اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور روتے ہوئے بے ساختہ سجدے میں گر جاتے ہیں, آنکھوں سے رونا جاری ہو جاتا ہے جو اس کثرت سے بہتا ہے کہ گویا آنکھیں ہی بہی جا رہی ہیں. یہ واعظ حضرت نے فرمایا کن کے لیے؟ علماء کرام کے لیے, علماء کرام کے لیے, اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے, اہل علم کے لیے یہ بات فرمایا کہ میاں کثرت ذکر اور قیام اللیل اور تہجد اور اللہ کا ذکر یہ چاہیے, یہ ہے علم کی پہچان. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دارالحکومت برکات رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے مقام اخلاص و محبت ایک واعظ ہے رسالہ, اس میں فرمایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کی محبت کا اتنا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ بغیر اللہ کے چین نہ پائے, جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لے اور زندگی کی بنیاد نہ بن جائے, تو اس کو اپنی زندگی پھیکی معلوم ہو, جیسے کہ دال کے بغیر ابلا ہوا چاول. کھانے پر بیٹھے تھے آپ, بھوک لگ رہی تھی, دفتر سے آئے, لاؤ بھائی کھانا, گھر والے کھانا لائے, صرف ابلا ہوا چاول یہ کھا لیجیے, اس میں نہ دال ہے نہ کوئی سالن ہے, تو اب بتاؤ وہ کیسا آدمی کو تھوڑی مشکل ہوگی کھانے میں. تو اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ایسی ہی اس کو بے لطف معلوم ہو جیسے کہ وہ بس ابلا ہوا چاول کھا رہا ہوں. جب تک یہ حال نہ ہو تو سمجھ لو کہ ابھی اللہ کی محبت کا ذرہ بھی نہیں ملا. समझ लो कि अभी अल्लाह की मोहब्बत का जर्रा भी नहीं मिला। अरे सुबह की तस्बीह रह गई, दुआ रह गई, अरे यासीन शरीफ रह गई, तो फिर खाना पीना आना जाना ये सब तो क्या फायदा भाई। मेरी तो जिक्र ही छूट गया आज, जिक्र ही छूट गया। अमीर मुआविया और कोई सहाबी का वाकया होता है, बताते हैं कि एक दफा यानी 5 वक्त की नमाज नहीं, तहज्जुद की नमाज छूट गई एक दफा, रात को नहीं उठ पाए नफिल के लिए। इतना रोए इतना रोए, दिन भर परेशान रहे कि मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया। हत्ता कि अगली रात को किसी ने आके उनको उठाया कि हजरत उठिए तहज्जुद पड़ी। तो उन्होंने कहा भाई तू कौन है? उन्होंने कहा आपको क्या मतलब, आप उठिए तहज्जुद पढ़िए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए? उसने कहा मैं शैतान हूँ, आप जल्दी से तहज्जुद पढ़िए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम तो नमाज से भगाना होता है, मुझको क्यों उठा रहे हो तहज्जुद को? उसने कहा बात यह है कि कल आपकी तहज्जुद छूट गई तो आप इतना रोए इतना परेशान हुए कि आपको तहज्जुद पढ़ने से ज्यादा सवाब मिल गया उस पर। अब मैं चाहता हूँ कि आप तहज्जुद ही पढ़ लें ताकि वो वाला सवाब आपको फिर ना मिल जाए। अल्लाह, ये अदारा तालीफात अशरफिया मुल्तान, इनकी किताब है मौलाना इसहाक मुल्तानी साहब की, आमाले दिल और अहवाले दिल, उसमें बुजुर्गों के इरशादात जमा किए हैं। फरमाया हजरत ने कि हम अपने घर में सफाई पसंद करते हैं, जरा कहीं कूड़ा करकट नजर आए तो घर वालों को डांट पड़ती है सफाई क्यों नहीं की। तो अपने घरों में सफाई चाहने वाले जरा गौर कीजिए कि दिल भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, उसमें भी सफाई होनी चाहिए। उस पर जो गुनाहों का मैल पड़ा है, कूड़ा करकट भरा है, अफसोस कि हमने अपने दिल को रद्दी की टोकरी बना रखा है, गार्बेज कैन। अपने दिल को आज हमने गार्बेज कैन बना रखा है। ये अल्लाह का घर है, वो भी चाहते हैं कि ये दिल साफ हो। जब साफ हो जाएगा तो अल्लाह की रहमतें खुद बखुद उसमें आएंगी। लेकिन जिस दिल में किसी गैर अल्लाह की तस्वीर बैठी होगी, तो अल्लाह ताला उस दिल में आना कैसे पसंद फरमाएंगे? इसलिए दिल पर मेहनत करने की जरूरत है, और इसके लिए अहलुल्ला मशायख बुजुर्गों से राबता करना और उनकी बातें सुनना, मलफूजात, ये तरीका है जिससे कि सदियों से अमल होता आया और इस तरीके से अल्लाह की याद, अल्लाह के ताल्लुक मजबूत होता जाता है। हदीस शरीफ में आया कि शैतान इंसान के दिल पर अपनी सूंड रखे हुए है, और अपनी यानी मुंह की एक नोक रखे हुए है आदमी के दिल पर। जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए तो इंसान के दिल को लुकमा बना लेता है, और फिर क्या होता है, वसवसे डालने लगता है। और अल्लाह का जिक्र करो तो वसवसे हट गए, शैतान चला गया। दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, ये मफहूम है बहुत मारूफ इनके मफहूम है, कि तुम्हारे बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। मालूम रहे, जान लीजिए, समझ लीजिए कि वो दिल है, दिल है, एक गोश्त का एक लोथड़ा है। अगर वो ठीक हो गया तो सारे बदन के आमाल, हर चीज़ ठीक हो गई। जब ईमान यकीन ठीक हो गया, अब नूरानी आमाल निकलने लगे, तो यहाँ पर मतलूब है इसकी सफाई। अम्बिया अलैहिस्सलाम दिल को पाक करने के लिए दुनिया में आते रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत कुलूब के तज़किये पर की। दिल बदल जाए तो इंसान बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, मकसद हयात बदल जाता है, देखने का अंदाज बदल जाता है, घर बदल जाते हैं, माशरा बदल जाता है, ज़माना बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, अखलाक बदल जाते हैं, और मोहब्बत और दुश्मनी के पैमाने बदल जाते हैं, और मेहनत और तजारत के टारगेट भी बदल जाते हैं। दिल बदला, ऊपर से नीचे तक इबादत, माशरत, अखलाक, मामलात, हर चीज़ में दीन आने लगा। अब खुद जाके उलमा से मसले पूछेंगे, मुफ्ती साहब ये बताइए, मुफ्ती साहब ये बताइए, दिल में एक फ्लैश आ गया। अब वही घरों से बच्चे हाफिज आलिम बन के निकल रहे हैं, और बात बात में खटक हो रही है, मियाँ ये ठीक है कि नहीं, दिल बदल गया। सहाबा ने भी इसी ट्रैक से तरक्की की, और उनके बाद जितने लोग आए उन्होंने इस रास्ते से तरक्की की, दिल बदल गया। इसी वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत का मैदान बनाया करते थे दिल को। आदमी का दिल बदल लो, दिल ले लो, बस बाकी सारा आदमी शख्सियत चेंज हो जाएगी। एक बुजुर्ग थे, ये इखलास के बारे में हजरत ने एक मजमून लिखा, इमाम मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी तफसीर और फिकह में, लेकिन किसी किताब को अपनी ज़िंदगी में जाहिर नहीं किया, किसी किताब को पब्लिश नहीं किया, किताबें लिख लिख के रखते रहे। उन्होंने किताबों को ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ कोई आदमी नहीं जान सकता था, खूब इल्मे दीन का काम किया और कहीं छुपा दिया अपने इल्मी खजाने को, अभी पब्लिश नहीं किया आप, और कोई नहीं जान सकता था। जब मौत का वक्त करीब आने लगा तो उन्होंने एक बाएतमाद, एक रिलायबल आदमी, कोई शागिर्द होगा, उसको बुलाया कि फलां जगह पर मेरी किताबें रखी हैं, वो मैंने तसनीफ की हैं, जब मौत आने लगे तो तुम अपना हाथ मेरे हाथ में रखना, और अगर इस हालत में मेरी रूह कब्ज हो गई तो समझ लेना कि ये मेरी किताबें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हैं, तो तुम जाके ये सब ओरिजिनल जो रिसर्च वर्क है ये सब दरिया में डाल देना, पब्लिश मत करना, और अगर तुम्हारे हाथ में मेरी रूह कब्ज ना की गई तो तुम समझ लेना कि अल्लाह ने इन किताबों को कबूल कर लिया है, तो तुम जाके फिर इनको लोगों के फायदे के लिए जाहिर कर देना, और ये समझ लेना कि मैं अपने मकसद में खालिस नीयत की वजह से कामयाब हो गया। टेस्ट मौत के वक्त देखना कि मेरा क्या हाल होता है, उसके हिसाब से फैसला करना कि मेरा जो जिंदगी भर की कमाई है उसका क्या किया जाए। जब उनकी मौत करीब आई तो उस आदमी ने अपना हाथ उनके हाथ में दिया और उनके हाथ को फैला दिया, लेकिन उनकी रूह कब्ज नहीं हुई उस वक्त, तो वो आदमी समझ गया कि इनकी सब किताबें मकबूल हैं जैसा फरमाया था उन्होंने, तो बाद में उन्होंने उनकी किताबों को जाहिर कर दिया। तो शेख यहाँ फरमाते हैं कि इन इमाम और मुसन्निफ ने दुनिया के अंदर ना अपनी ज़िंदगी में कोई तारीफ सुनी, ना किसी तारीफ वाले कलमात, ना किसी से प्रीफेस लिखवाया, ना किसी से मुकदमा लिखवाया, ना किसी से अपनी किताब की रिकमेंडेशन लिखवाई, ना किताब के कॉपी राइट के लिए कोई ऐलान जारी किया, बल्कि ये समझा कि पता नहीं ये मकबूल भी है कि नहीं, और जब मैं चला जाऊँ दुनिया से उसके बाद पब्लिश कर दे। ये होता है इखलास हमारे बुजुर्गों का कि जिंदगी में किसी से वाह वाह ली ही नहीं, काम करके चले। अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अंधेरी रात में रोटियां पकवाकर खुद अपनी पीठ पर उठाकर मसाकीन और गरीबों को जाके दे के आते थे। अंधेरी रात में रोटियां पकवाई, पीठ पर रखी और जा जाके थैले भर करके बांट रहे हैं, मसाकीन को देकर आए, और फरमाते थे कि रात के वक्त सदका करना अल्लाह के गजब को मिटाता है। रात के कोई देखता नहीं कौन ला के दिया, चुपके से दे दिया, ले जाओ थैला। और अहले मदीना के उन गरीब लोगों को मालूम नहीं होता था कि उनका खाना कौन ला के दे गया, खाना कौन ला कर दे गया। जब वो बुजुर्ग वफात पा गए तो लोगों ने रात के वक्त खाना देने वाला आदमी नहीं पाया, अरे वो आदमी आया था कहाँ से ला गया। और उनकी वफात के बाद उनकी पीठ पर वो निशानात मौजूद थे जो बोझ उठाने की वजह से पड़ गए थे, उनकी पीठ पर वो निशानात मौजूद थे जो बोझ उठाने की वजह से पड़ गए थे। और ये साहब तकरीबन 100 घरों का चक्कर लगाया करते थे, रोटियां पहुंचाते थे रात में, अहले मदीना के 100 खानदानों की परवरिश हो रही है, कोई जानता भी नहीं नाम के कौन है। एक बुजुर्ग थे दाऊद बिन अबी हिंद, उन्होंने 40 साल रोजे रखे, लेकिन उनके घर वालों को भी मालूम नहीं होता था कि ये रोजा रखते थे। सुबह के वक्त निकलते, गरीब मिसकीनों की खिदमत करते और शाम को वापस आके उनके साथ रोजा इफ्तार करते, मालूम नहीं। मुखलिस अपनी नेकियां इस तरह छुपाता है जैसे गुनाह छुपाए जाते हैं, और जो आदमी अपने इखलास की खुद गवाही दे मैं बहुत सिंसियर हूँ तो वो खुद इखलास का मोहताज है। और इखलास ऐसा राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान जिसको फरिश्ता भी नहीं जानता कि उसके बारे में लिखे, और न शैतान जानता है कि उसको ख़राब करे, और अल्लाह ही बंदों के अहवाल फरिश्तों को उस कदर देते हैं जितना वो चाहते हैं। यहाँ बात हो रही दिल की दुनिया बनाने की, खूब अमाल करो और कोई जानता भी ना, कायनात का एक जर्रा जर्रा पीछे रह जाएगा और इंसान की एक एक बात और अमल उठा के महफूज कर लिया जाएगा। जब इंसान अपना मकसद ज़िंदगी भूल जाता है तो सारे माल व असबाब और महल्लात और सवारियां होने के बावजूद हजारों लोग खुदकुशी कर डालते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लिया। और जब इंसान मकसद ज़िंदगी पहचान लिया तो एक छोटा सा मुसलमान हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाता है। इंसान के दिल में ऐसे हीरे मोती सोना चांदी और कीमती सिफात छुपी हुई हैं, उनको तलाश किया जाए और सही इस्तेमाल किया जाए तो एक आदमी अपने घर और ख़ानदान और शहरों और मुल्कों की हिदायत का ज़रिया बन जाता है। ये है मेहनत, आदमी के अंदर हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं उनको ढूंढ कर लाना, सिफात पैदा करना। उन सिफात में एक बड़ी सिफत है तकवा, जिसको के बुजुर्गों के वाकयात और उनके हिकायात से वाजे किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, कुतुब आलम इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, दारुलूम देवबंद के सरपरस्त थे। जब हजरत की उम्र जब नौजवान हुए 25 साल के हुए तो आप अपनी जो आपकी इनहेरिटेंस में अपने ख़ानदान में जितनी जायदादें मिली थी तो वो उनके पास आई कब्ज़े में। अब जवान हो गए 25 साल के, तो अब्बा दादा जो कुछ छोड़ा था तो वो इन ज़मीनें जायदादें उनके पास आई, तो आपने सारे कागजात देखे, लाओ भाई पेपर, और देखा कि आपके दादा ने एक कोई ज़मीन थी वो रहन की थी और कब्ज़े में रखी थी, उससे आमदनी हासिल की जा रही थी। उनके आमदनियों का हिसाब लगाया, कितना इसमें से वसूल होता है, कितना रेंट क्या आता है, और उसमें थोड़ा सा शक था कि भाई ये ठीक है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जाके सारे मालिकों को उनकी ज़मीनें वापस कर दी जिनकी थी, और उन बल्कि उन ज़मीनों से जो कर्ज की रकम से ज़्यादा आमदनी हुई थी, यानी इनके हिस्से में ज्यादा आ गया था, तो उसको भी असल मालिकों को जाकर लौटाया। यानी पेपर वर्क में तो उनकी वो भी और उनके पास आ रहा है उसका वो, लेकिन उसमें एक शरई मामले में इश्काल पेश आ गया, डाउट कि ये ठीक है नहीं। उन्होंने वापस पहुंचाया और जितना रेंट ज्यादा लिया वसूल किया था कर्ज से ज्यादा, वो भी वापस किया जाकर, और उसने अपना पैसा खर्च किया अपनी जेब से कि ये मामला ठीक हो जाए। हत्ता के हजरत के पास पैसे नहीं रहे, अपने घर वालों का जेवर भी बेच डाला ताकि ना हक और हराम आमदनी से हिफाजत हो और दूसरे का हक अपनी गर्दन पर ना रहे। ये किताब है 20 बड़े मुसलमान, उसमें है तज़किरतुर रशीद। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले ऐसे नहीं बन जाते, ये ऐसी मेहनत होती है, उनके पीछे ऐसी एहतियात होती है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहिश्ती जेवर के मौलिफ, मुनाजात मकबूल के मौलिफ, ये दो किताबें, हजरत ने 1000 से ऊपर किताबें लिखी, ये दो किताबें इतनी मकबूल हैं कि और कोई किताब नहीं होती तो कहते हैं एक ही किताब लिख जाते हजरत तो काफ़ी था उनके लिए। बहिश्ती जेवर, हेवनली ऑर्नामेंट और मुनाजात मकबूल, जो दुआ की किताब है। तो हजरत ने ऐसे ऐसे नमूने और मिसालें पेश की जो बाद में आने वालों के लिए नूर का मीनार है। आप जब सफ़र फरमाते तो मुकर्रा वज़न से ज़्यादा सामान उसके पैसे दिए बगैर कभी नहीं ले जाते। तो एक मरतबा सहारनपुर से कानपुर जा रहे थे और सामान में कुछ गन्ने साथ में थे, गन्ने जो चूसे जाते हैं शुगर के, सामान में थे कुछ साथ में, तो उनको जाकर स्टेशन पर तुलवाने लगे, यहाँ ये वज़न करो इसके पैसे लो। तो रेलवे का कोई भी मुलाजिम उसको वज़न करने पर तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, गैर मुस्लिम भी कहने लगे कि हजरत इसको तुलवाने की जरूरत नहीं है, ऐसी ले जाइए ऐसी ले जाइए, हम गार्ड से कह देंगे आपको कुछ नहीं कहेगा, आप मौलाना हैं आपके लिए आप ऐसी ले जाइए। आपने फरमाया कि ये गार्ड कहाँ तक जाएगा, जवाब मिला कि ये गाजी आबाद तक जाएगा। तो पूछा उसके आगे क्या होगा, वो कोई बात नहीं, वो अपने दूसरे साथी गार्ड से कह देगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप ले जाइए। तो जो आपके साथ कानपुर तक जाएगा जहां आपका सफ़र ख़त्म होगा, यानी हर जगह हम एक गार्ड को दूसरे गार्ड को सबको कह देंगे आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप मुफ्त में ले जाइए। सामान फरमाए लगे कि वहां पर मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होगा बल्कि उसके आगे एक आखरत का भी सफ़र होगा, वहां किसको जवाब दूंगा, उधर का क्या इंतज़ाम, ये वज़न करो तो ले जाता, वज़न करो तो ले जाता। बारीक बारीक बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रहती थी हमारे हजरात की। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये इंडिया में शेखुल इस्लाम कहलाते थे और जमीयत उलमाए हिंद के सदर थे ये, प्रेसिडेंट। लेकिन कभी अपने जाती इस्तेमाल के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर पैड इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रेसिडेंट जमीयत उलमा सारे इंडिया के उलमा के ये अमीर थे, और उसकी जाहिर को दफ्तर भी होगा, उसकी स्टेशनरी भी होगी, उसके कागज कलम भी होंगे, उनका नाम लिखा होगा जमीयत उलमा। कभी जो है अपने दफ्तर का लेटर पैड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने लिए अपने खर्चे से अलग लेटर पैड छपवाते और उस पर खत लिखते, उस पर खत लिखते, और अपना जाती खर्च खर्च कभी जमात पर नहीं डालते, और अपने खादिमों नौकरों को ताकीद करते कि जमाती और गैर जमाती खर्च में हमेशा इम्तियाज रखा जाए। और यानी बुजुर्ग ऐसे होते थे कि सैकड़ों लोगों के खाने के इंचार्ज हैं, बावर्ची खाने में, मतबख में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम है, लेकिन अपना खाना हमेशा घर से लेकर आते और अलग बैठ करके खाते, उसमें से निकाल के नहीं खाते, अपनी चीजें अपने पास से लेकर के आते। तो ऐसा उन्होंने एहतियात किया कि कोई चीज है, और खुशन माल के सिलसिले में एक एक पाई जो है उसको वो उस कहाँ से आई और किस तरह खर्च हुई, बहुत ख्याल रखना पड़ता। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने किताब लिखी वलीउल्लाह बनाने वाले चार आमाल, उसमें लिखा है, ये मजमून चल रहा है कि हमें यानी शेख की जरूरत क्यों है, शेख उस्ताद अल्लाह वालों से सीखना, अल्लाह की मोहब्बत, ये क्या रास्ता है, क्या तरीका है, ये तो इसके बारे में बातें पढ़ी जा रही है। कि हजरत हकीम उल उम्मत से उनके शागिर्द ने सवाल किया कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का क्या तरीका है, तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ली उनके जूतों में पड़ जाओ, यानी अपने नफ्स को मिटा दो और उस नियत से उनके पास जाओ, जो वो बताएं वो करो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। जो लोग अल्लाह के पास उन्होंने मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की की है उनसे पूछ पूछ करके अपने दीन में चलो। एक बार किसी ने पूछा, शागिर्दों को इश्काल होता है डाउट्स, और शागिर्द भी ये बाद में हकीम उल उम्मत के जितने शागिर्द थे और बहुत दर्जनों उलमा के शुयूख बने, ये कोई मुफ्ती आजम बना, कोई कहाँ बना, कोई इंडिया में आया, कोई पाकिस्तान में आया, पहले मजलिस होती थी तो ये सब बैठते थे स्टूडेंट्स। एक शागिर्द ने पूछा, क्या अल्लाह के जिक्र में ये तासीर नहीं कि हमें अल्लाह तक पहुंचा दे, फिर हम अहलुल्लाह की सोहबत में क्यों जाएं, शेख की क्या जरूरत है, हम खुद तस्बीह से पढ़ लें, हम पहुंच गए खुद। तो फरमाया कि काट तो तलवार ही करती है, मगर शर्त यह है कि सिपाही के हाथ में हो, काम तो तलवार से ही होगा जिक्र से, लेकिन शर्त यह है कि सिपाही के हाथ में हो, अल्लाह वालों के मशवरे से हो कि कैसा जिक्र हो, क्या चीज छोड़ू, क्या चीज करूँ। अल्लाह, यहाँ पर बहुत अहम मजमून है जो हमारे लिए और हम जैसे यानी आम आवाम के लिए बहुत फायदे का है। हजरत ने फरमाया कि अपने आप को सबसे कमतर समझ लो और सबको अपने से बेहतर समझ लो। हकीम उल उम्मत फरमाते हैं कि मैं तमाम मुसलमानों से अपने को कमतर समझता हूँ फिलहाल, और काफिरों और जानवरों से भी कमतर समझता हूँ फिल माआल यानी अंजाम के एतबार से। हर मुसलमान मौजूदा हालत में, खा वो गुनाह की हालत में हो, मुझसे बेहतर है, ऐसा समझो, वो समझते थे हकीम उल उम्मत। क्योंकि मुमकिन है कि किसी गुनहगार मुसलमान या जाहिल गंवार का कोई अमल मकबूल हो गया हो और क़यामत के दिन उसकी माफ़ी हो जाए, मुझे क्या मालूम, और मेरा कोई अमल ना मकबूल हो गया तो सारा इल्म व अमल बेकार हो जाए। ये हजरत फरमा रहे हैं, 1,000 से ऊपर किताबें लिखी और लोग कहते थे कि अशरफ अली कोई आदमी नहीं है, कोई कंपनी है, एक आदमी 1,000 से ऊपर किताबें कैसे लिख सकते। फरमाने लगे कि मेरा कोई अमल छूट गया हो उसकी वजह से क़यामत में पकड़ा जाऊँ, क्या मालूम, और ये आदमी कोई है सड़क पर चलने वाला, इसका कोई अमल मकबूल हो, क्या मालूम, तो ये मुझसे अच्छा ही है, समझो ऐसा। और फरमाया कि काफिरों और जानवरों से भी कमतर समझता हूँ अंजाम के एतबार से, क्योंकि मालूम नहीं मेरा खात्मा कैसा होगा, अगर खात्मा खराब हो गया तो जानवर भी बेहतर है क्योंकि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, जानवर से हिसाब नहीं लिया जाएगा, और अगर काफिर का खात्मा भी ईमान पर हो गया तो जिंदगी भर का कुफर माफ हो जाएगा और जन्नत में चला जाएगा। लिहाजा अपना हकीर और कमतर होना कोई वहमी और ख्याली बात नहीं है, सॉलिड हकीकत है, रियलिटी है, ऐसा अपने नफ्स की तरबियत करते, और अकल की बात है, और खुद को बेहतर समझना बड़ी हमाकत और बेवकूफ़ी है। हम बहुत अच्छे हैं, ये एक रूहानी बीमारी है, इसको कहते हैं हुजूब प्राइड, हम उससे अच्छे हैं ये और बड़ी बीमारी है, इसको कहते हैं किब्र, हम बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ये तो और बड़ी बीमारी है, इसको कहते हैं तकब्बुर, पैरों में। ऐसी बारीक बारीक चीजें होती हैं जिनको अहलुल्लाह के पास जाकर अपने दिल से ये ख्यालात निकालने पड़ते हैं। तो मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सुबह शाम जैसे दुआ करता है आदमी, जिक्र कर रहा है कहीं बैठ के, तो अपने आप को कह लिया करो, मियां फलाने मैं तमाम मुसलमानों से कमतर हूं, ये कह लिया करो सुबह शाम अपने आप को, तो उसकी बरकत से तकब्बुर से हिफाजत रहेगी और मर्दूदियत से हिफाजत रहेगी। और जब नफ्स में कोई बुराई या बदनजरी का तकाजा हो या कोई गुनाह को दिल चाहे, तो आईने में जाके अपनी शक्ल देखो कि अल्लाह ने कैसी अच्छी शक्ल बताई है, बनाई है, और अल्लाह वालों की सूरत दी है। फिर गौर करो कि क्या ये करतूत इस शक्ल को जेब देते हैं, यानी इतनी अच्छी शक्ल और ऐसा काम करने जा रहे हो तुम। और अपने नफ्स से कहो कि ओ कमीने खबीस, शर्म नहीं आती तुम्हें, अपने आप को कहो, और तुम्हारी शक्ल ऐसी अच्छी और तुम काम शैतान के करना चाहते हो। और आईना देखकर ये सुन्नत की दुआ भी पढ़ो, अल्लाहुम्मा अंता हसन तखल्की हसन खुदुकी, ऐ अल्लाह आपने जैसी मेरी सूरत खूबसूरत बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दीजिए। हमारे बुजुर्ग छोटी छोटे बातों से, मलफूजात से तरबियत फरमाते हैं, और ये चीज़ मिलती है अल्लाह वालों से कि अगर एक बार ये दिल ठीक हो गया तो अब सारे आमाल में बरकत आने लगेगी। हजरत डॉक्टर इस्माइल मेहमद मदनी साहब दामत बरकातहू, शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, और माशाल्लाह बफलो में इनका बड़ा दारुलूम चलता है और कनाडा में भी। हजरत ने किताब लिखी नस्बत और एहसान, और फरमाया कि नस्बत और एहसान के अल्फाज बंदे के अल्लाह से उस ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कसरत जिक्र, हर वक्त का ध्यान, मुसलसल फरमा बरदारी और इताअत करने के बाद हासिल हो जाता है, और उसके बाद अल्लाह की इबादत और फरमा बरदारी आसान और तबीयत सानिया बन जाती है, सेकंड नेचर। अब कोई मशक्कत नहीं होगी, नमाज को उठो, नमाज को जाओ, अब जिक्र करो, अब दुरूद पढ़ो, अभी आंखें बचाओ, अब ये करो, डूज एंड डोंट्स, यानी हर एक हुक्म को आने में अब कोई मशक्कत नहीं है, सेकंड नेचर बन गई उस आदमी से, अब यही अमल हुआ करेगा, आसान कर दिया अल्लाह ने उसके लिए, आसान कर दिया। ये थोड़ा सा मुजाहदा और मशक्कत करने के बाद ये चीज़ आदमी को नसीब हो जाती है। अब ये हम चीज़ सुनने की है जो फजाइल बयान करते हुए हजरत ने लिखा कि इस्लाह के बाद जो भी अमल किया जाएगा उसकी कीमत लाखों गुना बढ़ जाएगी, और ज़िंदगी मुख्तसर है, चंद साल को आदमी चंद सांसें लेके आया है, और नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़िक्र, तस्बीह, सदका, नेक अमाल में लगा हुआ है। क्या ही अच्छा हो कि एक एक अमल का सवाब जरा बड़ी बड़ी तराजू में तुले, अमल तो वही है, ज्यादा नहीं ला सकते। तो फरमाए कि इसलाह के बाद जो अमल किया जाएगा उसकी कीमत लाखों गुना बढ़ जाएगी। सहाबा कराम रदी अल्लाह अनुम का एक मुद जौ, यानी एक मुट्ठी भर बारले, हैंडफुल ऑफ बारले, कोई चीज सदका करना, बाद वाले जो आए अगर वो ओहद पहाड़ के बराबर गोल्ड अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, ये लो ट्रिलियंस का डोनेशन मेरी तरफ से, बाद वाले सोने का एक पहाड़ खर्च कर दें, तो सहाबा का इतना सा जो गल्ला खर्च करते थे उसके बराबर सवाब को नहीं पहुंचता। क्या बात है, वही हाथ पैर, वही चीजें, आंख भी थी उनकी, मुसलमान थे वो भी, नमाज पढ़ते थे, ये फर्क कैसे आ गया? तो वो फरमाते कि उनकी कल्बी कैफियत एहसान, उनके दिल में इखलास का ऐसा जज्बा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी सोहबत, तो वो कहाँ से लाओगे? उसके लिए मेहनत करो। तो उसकी वजह अंदर का जज्बा है जिसका दारोमदार दिल की इस्लाह पर है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगरचा इल्म हदीस बिज़ात हर चीज पर मुकद्दम है, इल्म हदीस हर चीज से ऊपर है, ऊंचा है, लेकिन अस हकीकत में तसव्वुफ किताबुल्लाह और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह है। तसव्वुफ किताबुल्लाह और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह है। अल्लाह, कायनात में दूसरा मजमून है कि कायनात में असल कीमती चीज इंसान है और दूसरी चीजें उसके लिए मुसख़र है, और आदमी के बदन से निकलने वाले नूरानी आमाल की अहमियत है। अच्छे आमाल निकले तो दुनिया में भी कामयाबी, राहत, चैन, घर में सुकून, कब्र में गया वहां पर भी जन्नत का बाग हो गया, आखरत में भी बड़े बड़े महलात मिले, आसानी, चैन, सुकून, ये ईमान और यकीन और आमाल की बरकत। और अगर आमाल अच्छे नहीं निकले तो दुनिया में भी परेशानी, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, तंगी, और कब्र में जाए अल्लाह बचाए सांप बिच्छू और आग, और आखरत में अल्लाह बचाए तो फिर तो जहन्नम और पुलसरात और चीजें, ये सारे यानी आदमी को दोनों रास्ते बता दिए गए थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा मिलेगा। हिदायत के असबाब आदमी के दिल के अंदर हैं, बाहर की चीजों में नहीं है। कुर्सी, टेबल, चीजें, फर्श, फला, कारपेट, दीवारें, हिदायत के असबाब आदमी के अपने दिल के अंदर है। चाहे वो गरीब हो चाहे बादशाह हो, दोनों कामयाब हो सकते हैं। इंग्रेडिएंट उसके अपने अंदर मौजूद है, बाहर से नहीं आते। आदमी सोने की कान की तरह है, गोल्ड माइन, अन्नासो मादिन, अरबी में कहते हैं अन्नासो मादिन। आदमी गोल्ड माइन की तरह है कि जितनी मेहनत करोगे उतने उसमें से सोने, चांदी, जवाहरात निकलते जाएंगे। जितना खोदो, जितना उसको उसको रिफाइन करो, निकलते चले जाएंगे। तो ये मेहनत है। और हिस्सा क्या है कि आदमी गफलत में पड़ा हुआ है, इंसान के ऊपर गफलत पड़ी हुई है। तो हीरा है लेकिन चमक नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर जो है वो डस्ट पड़ी हुई है। इखलास और तकवा और ईमान और एहसान, सदका और सब्र, शुक्र, ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी मजलिस हो, ऐसे तस्किरे हो, तरगीब की बातें हो, दावत तबलीग का सिलसिला हो, इस्लाह तजकिए का सिलसिला हो, कि आदमी सारे के सारे कामयाब हो जाएं, बंदे अल्लाह के महबूब बन जाएं और अल्लाह की रहमत बंदों के लिए आ जाए। तो जब ऐसा होगा तो एक आदमी लाखों की हिदायत का जरिया बन जाएगा। एक आदमी वही गोश्त पोस्ट का, दो पैर हैं, दो हाथ है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को उससे फायदा हो जाएगा। ये हुई दिल पर मेहनत करने से, ईमान यकीन के जरिए ये फायदा हासिल हुआ। हजरत शेख मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी दामत बरकातुम दारुलूम कराची में उस्ताद हैं। हजरत ने तसव्वुफ की हकीकत पर एक रिसाला लिखा और उसमें कुछ सवालात के जवाब दिए। फरमाया कि पूरे दीन का मकसूद नजात कामिला और अल्लाह का कुर्ब है, यानी आखरत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए, ये चाहिए। और दुनिया और जन्नत में अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा कुर्ब और दीदार नसीब हो, ऐसा चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे दीन पर अमल किया जाए और दिलो जान से अमल किया जाए, चाहे वो अहकाम इंसान के जाहिर से मुताल्लिक हो, आउटवर्ड, या इंसान के बातिन से मुताल्लिक हो, दिल की दुनिया। दोनों पर अमल करना ज़रूरी है। इसके बगैर नजात कामिला और अल्लाह का कुर्ब मिलने की उम्मीद रखना बेकार है। बड़े मौलाना फरमा रहे, तो दीन के जो अहकाम जाहिर से मुताल्लिक हैं, चाहे वो अवामिर हो, हुक्म, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, कस्बे हलाल, या वो नवाही हो जिनसे रुकना है, जैसे चोरी, डाका, शराब नोशी, हराम खोरी वगैरह, तो ये वाले जो ज़ाहरी अहकाम हैं उनसे इल्म फ़िक़ह में बहस की जाती है, फ़िक़ की किताब, जूरिसप्रूडेंस, लॉज। और ये अहकाम अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इजमा सहाबा और उम्मत और मुज्तहदीन का इज्तिमा और क़यास से साबित होते हैं। कहाँ से आए ये रूल, क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है। अब उसके जो बाकी अहकाम इंसान के बातिन से मुताल्लिक हैं, यानी अंदर से मुताल्लिक हैं, चाहे वो करने के काम हो, अवामिर, जिन जो बातें, जो सिफात अल्लाह ने हुक्म दिया कि लाओ, मसलन सब्र, शुक्र, तकवा, इखलास, या नवाही हो, जो बातें जिनसे अल्लाह ने रोका, तकबुर मत करो, गबब, हिर्स, हसद, रिया, इनसे रुक जाओ, तो इन चीज़ों से इल्म तसव्वुफ में बहस की जाती है। और ये अहकाम भी अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा और कयास से ही साबित हैं। इस तसव्वुफ को सुलूक और फ़िक़्हे बातिन कहा जाता है, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है, दीन का ही हिस्सा है और उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाहर की चीज़। तो जिस तरह कामिल दीनदार बनने के लिए नमाज, रोज़ा वगैरह, भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तो किसी एक टाइम की नमाज पढ़ लिया किसी ने, या किसी रमज़ान में एक दफ़ा रोज़ा रख लिया था, ऐसा काफ़ी नहीं है, ठीक है, बल्कि हर वक्त जब भी उसका वक्त आए तो फ़राइज़, वाजिबात, सुनन मौक़दा पर पाबंद होना ज़रूरी है। इस तरह फ़िक़्हे बातिन और तसव्वुफ में किसी एक दो नेमतों पर शुक्र कर लेना या कभी एक दो मौके पर सब्र कर लेना काफ़ी नहीं है, بلکہ شکر کے تمام موقعوں پر زبانی، عملی، قلبی شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے. جس طرح فقہ میں کہا کہ فلاں کام مت کرو، تو کبھی کبھی چوری کر لینا، کبھی کبھی چوری کر لینا، کسی جگہ حرام کمائی کھا لینا جیسے مہینے میں ایک دفعہ، تو یہ کامل دیندار ہونے سے کہ منافی ہے کہ بھائی دیندار نہیں ہوا یہ. اسی طرح تصوف کے راستے میں کبھی کبھی تکبر کر لینا، سمجھے، کبھی کبھی تکبر کر لینا، کبھی کبھی ریاکاری کر لینا، اور یہ چیز تزکیہ نفس کے کمال کے منافی ہے کہ یہ چیز مت کرو، یہ پورے پورے آ جاؤ دین میں. یعنی جس طرح ظاہری چیزوں میں آدمی حلال حرام پوچھ پوچھ کے عمل کرتا ہے، اس طرح اپنے دل کی باتوں میں اور ان اعمال میں بھی ویسا ہی توجہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے مزکی اور شیخ تھے، استاد تھے، اور صحابہ اپنے بعد آنے والے تابعین کے لیے شیخ اور استاد تھے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل ایسے چلا آ رہا ہے، گولڈن چین ہے. جیسے محدثین ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے آئی، تو ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ لے کر آئے، وہ کہاں سے لے کر آئے، تو ان سے لے کے امام بخاری تک ایک سند ہے، تو امام بخاری کہاں سے لے کر آئے، تو ان سے لے کے تابعین، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سند ہے. تو یہ 40 42 45 یہ ایک گولڈن چین ہے کہ اتنے لوگ ہسٹری میں گزرے ہیں جنہوں نے یہ علم آگے بتایا ہے اپنے شاگردوں کو. بالکل اسی طرح بزرگوں کا ایک سلسلہ ہے، گولڈن چین ہے یہ بزرگوں کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی. آگے حضرت نے یہاں ایک شعر لکھا ہے کہ اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہے تو رہبر کا دامن پکڑ کر چلو، کیونکہ جو آدمی بھی عشق یعنی محبت کے راستے میں بغیر دوست کے چلا، بغیر گائیڈ کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ کیا تھا یہ. آگے حضرت نے لکھا کہ قرآن و سنت میں ثابت ہے کہ تزکیہ نفس دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک مجاہدہ یعنی خواہشات نفس کی مخالفت، اور دوسرے اذکار نوافل، اور دوسرے خیر کے اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. ایک ہے اپنے نفس کی جو غلط خواہشات ہیں ان کو دبانا، اور ایک ہے پھر ذکر اور نوافل اور اللہ کے قرب کے نیک اعمال، ان میں ترقی کرنا. تو اب جو ہے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے آپ کے نفس کے ساتھ کیسا کیسا مجاہدہ فرمایا. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آرام فرماتے تھے، ایک ٹاٹ کا بستر تھا، ایک ٹاٹ کا بستر تھا، ایسا ایک بوریا کو ایسی چیز، جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہرا کر کے بچھاتے تھے، ٹو فولڈ کرتے تھے، بستر ہو گیا. ایک رات ہم نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے، تو بستر کو مزید فولڈ کر کے چار تہیں کر دی، سافٹ بنا دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات تم نے ہمارے لیے کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا وہی پرانا بستر تھا، لیکن ہم نے صرف اس کو چار تہیں کر دی تھی، فور فولڈ کر دیا تھا رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پہلی حالت میں کر دو جیسا تھا وہ، ٹو فولڈ، کیونکہ اس بستر کی نرمی نے مجھے آج نماز کے لیے اٹھنے سے روک دیا. ترمذی شریف میں یہ واقعہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 100 مرتبہ استغفار فرماتے، صحابہ کاؤنٹ کر لیتے اتنی مرتبہ فرماتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے کہ خیر الخلائق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہے، صدیوں سے جو جاتا سلام پیش کرنے ان کو بھی سلام پیش کرتا، روضہ مبارک میں وہیں پر ہیں، اور پہلے وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور ان کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، ایسے ایسے درجات ان کے. تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، یہ کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس زبان نے مجھے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، اس زبان نے مجھے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. یہ واقعہ مشکات شریف میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा उन्होंने नमाज के बाद ऐलान किया कि भाई बयान होगा हमारा, खलीफा है अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने कहा बयान होगा, लोग जमा हो जाओ। लोग जमा हो गए तो आपने अल्लाह की तारीफ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और फरमाया कि ऐ लोगो, क्या बयान किया, ये बयान किया, ऐ लोगो मैंने वो जमाना देखा है कि जब मैं बनी मखजूम कबीले में अपनी खालाओं की बकरियां चराया करता था और मेरी खालाएं मुझे एक मुट्ठी भर खजूर और किशमिश दे देती थीं और मैं उससे अपना सारा दिन बसर करता था, वो दिन भी क्या दिन थे ऐ लोगो। बयान हो गया, बयान खत्म। तो अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आज तो आपने अपना एक ऐब और डिफेक्ट बयान करने के अलावा कोई और बात ही नहीं की, हमको क्यों जमा किया है सुनाने को। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा हुआ कि मैं अकेला था तन्हाई में, तो मेरे नफ्स ने मुझसे कहा कि तू अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों में तुझसे ज्यादा अफजल कौन होगा। तो मैंने इरादा किया कि अपने नफ्स को कुचलूं और उसको सजा दूं, लोगों को जमा करके अपना पास्ट एक बताया कि मैं तो ऐसा था, ऐ लोगों तो धोखा मत खाना। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहाबा अपने जात के बारे में कितने मोहताज थे और अपने आमाल और कुलूब पर कैसी निगाह रखते थे। उनको एक एक चीज का ध्यान रहता था कि कैसा वो है। अल्लाह, आज ऐसा होता है कि बाज मरतबा, यानी कोई हजरत ने किस्सा बयान फरमाया कि कोई साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा मेरा लड़का बहुत एजुकेटेड है, बहुत तालीम याफ्ता है, मेरा लड़का बहुत तालीम याफ्ता है और सेहतमंद भी बहुत अच्छा है और आमदनी भी उसकी बहुत अच्छी है, सारी खूबियां बयान की। लड़के में क्या क्या देखा जाता है, बहुत तालीम याफ्ता हो, सेहत हेल्थ वगैरह भी बड़ी अच्छी हो, आमदनी भी बहुत अच्छी हो। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है मेरा लड़का, मगर थोड़ा सा बेदीन हो गया है, थोड़ा सा बेदीन हो गया है, क्या किया जाए साहब। तो हजरत ने फरमाया कि ये वही किस्सा है कि एक गांव में एक आदमी था जो बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार हो गया बिल्कुल कि उम्मीद नहीं रही कि पता नहीं जिंदा है कि दुनिया से चला गया। तो लोग जो है देहाती डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर साहब देखो इसको क्या हुआ, इसको पता नहीं चल रहा। तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि, लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ कैसा है, देखो डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसकी आंखें भी ठीक हैं, इसके हाथ भी ठीक हैं, इसके पांव भी ठीक हैं, इसका सर भी है, इसका मुंह भी है, इसका कान भी है, हर चीज मौजूद है, बस जरा सी रूह निकल गई है इस आदमी की, जरा सी रूह निकल गई है, ये चला गया है, नहीं है ये। तो ये किस्सा होता है कि दीनदारी चली गई तब क्या रह गया। एक गुलाम थे उनका नाम था मुबारक, और उन्होंने उनके एक आका थे मालिक, और उनके घर में उनकी एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत समझदार, और उसके लिए वो शादी के पैगाम देख रहे थे और रिश्ते आ रहे थे। तो उन्होंने अपने गुलाम से एक मरतबा मशवरा किया मुबारक से कि बताओ ये रिश्ते वगैरह के कहाँ पर तय किया जाए, रिश्ते आ रहे हैं। तो मुबारक गुलाम ने उनको मशवरा दिया कि देखिए ये जो ईसाई होते हैं वो तो खूबसूरती देख के शादी करते हैं ईसाई, और जो यहूदी होते हैं वो तो पैसे देख के शादी करते हैं, और जो मुशरिकीन अरब वगैरह हैं वो देखते हैं कि खानदान कैसा है, फैमिली लीनिएज वगैरह देखते हैं कि कोई ऊंचा खानदान हो तो वहां पे करते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो दीनदारी देख के शादी करता है, मुसलमान दीनदारी देख के शादी करता है। तो वो जो है वो भी यानी पढ़े लिखे दीनदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये बातें और मैंने भी सुनी थी, हदीस शरीफ में सुना था, लेकिन इतने एक्सप्लेन करके मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, तुम्हीं ने बताया तो अब यू डिजर्व इट। गुलाम को आजाद किया और अपनी बेटी उनके निकाह में दी। इस जोड़े को अल्लाह ने नवाजा और उनसे जो बेटा पैदा हुआ वो आगे जाके इतना बड़ा फकी और अल्लाह का वली और इमाम वो बने, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्ला अलैह, पैदा हुए उस घराने में अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्ला। ये اس سے حضرت نے ایک واعظ میں فرمایا کہ صحبت صالحین، کہ جب معاملہ کرنا ہو تو نیک لوگوں کو ڈھونڈو اور نیک لوگوں کو تلاش کرو، دینداری دیکھی جائے. اب قصہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس چار چینل ہیں، آنکھ اور زبان اور کان اور دل اور دماغ. یہ ایسا ہے گویا کوئی ملک ہوتا ہے تو اس میں ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، فورن منسٹر، باہر کی چیزیں پوچھ کے آتا. آدمی اتنا کمپلیکس ہے اس کے چار فورن منسٹر، ایک نہیں. آنکھ سے جو دیکھے گا فوٹوگرافک میموری ہے، دل میں اس کا عکس ہو گیا. حتیٰ کہ ایک 5 سال کا بچہ بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے شرم و حیا کے مخالف ہے اس میں، تو ساری زندگی اس کو فوٹوگرافک میموری رہتی ہے. اس لیے پردے وغیرہ کے احکام، گھروں میں چیزیں سب بتائی جاتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے اس پہ بھی احتیاط کیا جائے، کہ جو دیکھتا ہے اس کا عکس دل پر پڑ جاتا ہے، حافظے پر، دل پر. اس وجہ سے پردے اور حجاب کے احکام، نظر نیچی رکھنا، بد نظری سے بچنا، بد نظری کے ایک گناہ نے لاکھوں لوگوں کو اللہ کے پاس پہنچنے سے روک دیا. اس لیے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی کے ساتھ ملفوظات، کتابیں، ان کے بیان اور دروس اسی ایک ٹاپک میں ہوتے ہیں کہ بھیا آنکھوں کی حفاظت کرو. 80 سال کے بزرگ شیخ المشائخ، اب تو دنیا تشریف لے گئے، ان کے سارے بیانات میں بات یہی ہوتی ہے کہ بھیا آنکھوں کی حفاظت کرو، یعنی جو اس کی کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہے زبان، جو کہ آدمی کے دل کی سفیر ہے، ایمبیسیڈر آف دا ہارٹ. زبان سے جیسا بولنا شروع کرو دل میں ویسی خیالات آئیں گے. ایک کلمہ خیر بولا آپ جنت کی طرف لے گیا، اور وہی آدمی ایک کلمہ شر بول گیا آپ جہنم کی طرف لے گیا. لقمان حکیم فرماتے تھے کہ میں جب بھی پچھتایا، جب بھی ریگریٹ ہوا، جب بھی پچھتایا بول کر پچھتایا، کبھی بھی خاموش رہ کے نہیں پچھتایا. جب بھی کوئی گڑبڑ ہوئی بولنے کی وجہ سے. تو زبان جو ہے اس کی بہت ساری آفات ہیں، ان سے بچنا. اور اپنے کانوں کو بچانا غیبت سے اور جھوٹ سے، لایعنی اور موسیقی سے. اور اپنے دل، دماغ اور نفس کو بچانا. آدمی کا دل اور دماغ ایسا ہے کوئی گیگا ہرٹس کا کمپیوٹر ہے، بہت بڑا سپر کمپیوٹر لگا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آدمی نے خیال نہیں کیا تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ، اتنا بڑا کمپیوٹر ہے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا، گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ ہو رہا ہے. تو نفس کو، دل و دماغ کو اس کی مرغوب چیز دی جائے، فائدے کی چیز، ذکر، تلاوت، درود، استغفار. تو آپ اپنے نفس کو اگر حق میں مشغول نہیں کریں گے تو باطل میں لگا دے گا. خیال کا گھوڑا ہوتا ہے، آدمی کی جو تھنکنگ ہے وہ اتنی تیز رفتار ہے، آدمی کی سوچنا اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں جو ہے زمین سے نکل کے چاند پہ پہنچا اور سارے سولر سسٹم سے نکل کر ملکی وے سے باہر چلا گیا اور فوراً واپس بھی آ گیا، اسپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز ہوتا ہے خیال کا گھوڑا. اس لیے نماز میں آدمی کھڑا ہوا، بزنس کے کام کے خیال آ رہے ہیں، بچوں کے خیال آ رہے ہیں، جیسے ہی کھڑا ہوا خیالات آنے شروع ہوئے. تو خیال کے گھوڑے کو کسی نیک مقصد، کسی نیک بات کی طرف فوکس کر دینا چاہیے. سوچو کہ میں بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں ہوں. سوچو، جب کوئی ادھر ادھر کی چیزیں سوچتا ہے آدمی، مارکیٹ اور چیزیں، اس کے بجائے یہ سوچو تو جو خیال کا گھوڑا ہے تو وہاں جا کے رک جائے گا، اچھا بیت اللہ کو جانا ہے تو وہاں چلا گیا. تو اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ نماز میں جو پڑھتے ہیں ان الفاظ پہ دھیان دو، کیا پڑھ رہا ہوں میں. میاں مسلمان بھی آیا اور کہنے لگا کہ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ نماز میں اب کھانس رہے ہیں، او کر رہے ہیں، کہ پتہ نماز ان کے لیے برڈن ہو گئی، کیا ہو گئی. کہنے لگا کہ میں تو جب نماز میں ہر ورڈ جو پڑھتا ہوں تو میں اس پہ غور کرتا ہوں میننگ میں، کہ مجھے اللہ کی اویئرنیس مل جائے، کہ الکانشیس آف گاڈ، کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ایک نئے مسلمان کو بھی اس کا خیال ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بزرگوں سے اصلاحی تعلق میں، ان چیزوں میں ترقی ہوتی ہے کہ ہماری اصلاح کامل ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے، توبہ قبول ہو، شیطان اور نفس سے بچ جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگ اہل اللہ، ان کے پاس آنا جانا ہوگا، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے ملفوظات، کتابیں. تو شیخ کی عادات اور معمولات اور ان کی عادتیں اور ذکر و فکر ہمارے اندر بھی آ جائیں، ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور زندگی بھر ان کی رہنمائی اور مشورے سے چلیں اور ان کی دعا لیں، یہ مقصد ہوتا ہے. حکیم الامت نے رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کی 3 پہچان بتائی، کہ زندگی میں سنت طریقوں کا اتباع ہو، اور کسی اہل اللہ بزرگ سے ان کو باقاعدہ اجازت ہو، और उनकी सोहबत और मजलिस में आखरत की फिक्र बढ़ती हो और अल्लाह से ताल्लुक महसूस हो। हज़रत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुह ने एक बात का यहाँ पर इजाफा फरमाया कि उस शेख या उस्ताद से राबता करना, इस्तिफादा करना या ताल्लुक कायम करना मुमकिन हो, मसलन उनको खत लिखे तो जवाब आता हो, मतलब शेख इतना मशगूल ना हो कि है तो लेकिन आपकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं, आपने खत लिखे कोई जवाब ही नहीं आया, तो यानी उनको मालूम ही नहीं कि आप हैं भी या नहीं है। तो ऐसा कोई आदमी हो शेख जिनको आप रब्ता करें तो आपको कोई रिस्पांस भी मिलता हो। अल्लाह अकबर। देखिए आज के ज़माने में दुनिया में किताबें और आर्टिकल और अखबार और रिसाले और वेबसाइट और बयानात और कॉन्फ्रेंसें और कोर्स, इसकी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है पुराने ज़माने के मुकाबले में। हर आदमी के एक ब्लॉग, एक वेब पेज है, ऐसा भी होता है। तो जितने मुंह उतनी बातें, जितने सर उतनी बातें। और ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी फार्मेसी में चला गया, दवा खाने में, तो ए से लेके जी तक हर अल्फाबेट पर एक दवा रखी हुई है। और वो बुरी नहीं है, किसी काम की है, अच्छी दवा है, लेकिन आपके लिए नहीं है कि आप थैले में, कि मेरे पास सेल लगी हुई है, थैले में डाल दो भाई 50 दवाएं, मैं सब इस्तेमाल करूँगा। दुनिया भर के अखबार, रिसाले, मैगजीन, ये साइट इधर क्लिक करो, ऐसा पढ़ते हैं, ये सुन लो, इसमें भी चले जाओ, ये वाला भी प्ले कर लो। आजकल ये मजाक हो गया, फोन को जो है वो हो गया है आपका, मतलब वो शेयर हो गया, वो कभी इधर चला जाता है ख्याल का कूड़ा, कभी उधर चला जाता है, हर चीज़ फोन के ऊपर आ गई। तो मेरे इसी तरह लाइब्रेरी जाओ तो ए से जी तक पूरा कैटलॉग होता है, हर टॉपिक पर, हर टॉपिक पर उसमें कोई किताब होती। लेकिन क्या है कि मेरे लिए कौन सी दवा बेहतर है, इसके लिए शेख से पूछना पड़ता है, रूहानी डॉक्टर से, कि मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मेरा तो वक्त इतना कम है, मेरे तो 1 ही घंटा मिलता है, 5 ही मिनट मिलते हैं। तो आदमी के अहवाल, उम्र और रुझान और हुकूक व फराइज, घर की सिचुएशन, सेहत, ताकत और तकाजे और उसके नफ्स की शरारतें, तो उसके मुकाबले में शेख बताता है नुस्खे इलाज कि आपके लिए ऐसा करना और ऐसा ऐसा नहीं करना। तो कोई मेंटर, कोई आदमी के लिए कोई गाइड, कोई रहबर की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें क्या है, अब कि अपनी ज़िंदगी को अगर हम कीमती बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इरादा किया, नीयत की, इस्तिखारा किया और देखा कि दुनिया में कौन कौन से बड़े शुयूख मौजूद हैं जिनसे राबता किया जा सकता है, जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, और इस्तिखारा किया कि या अल्लाह मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। और फिर उनकी अगर कोई मजालिस हैं या उनकी किताबें हैं, उनके मलफूजात, बयानात, उनका मुताला शुरू किया कि भाई ये मेरे लिए मुनासिब रहेगा। और एक बहुत अहम अमल है तौबा की तकमील, कि जिस वक्त से बालिग हुए थे हम 15 साल के, उस वक्त से लेके अब तक अल्लाह के कोई हुकूक, राइट्स छूट गए, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज में कमी कोताही रह गई, तो उसको आप पूरा करें, उसकी माफ़ी मांगें अल्लाह से। और बंदों के कुछ हुकूक रह गए, किसी को ज़बान से तकलीफ़ दे दी या किसी की कोई चीज़ ले ली, तो उसको वापस करें, उससे माफ़ी तलाफ़ी कराएं, इसको कहते हैं तौबा करना। इसी में एक चीज़ है कि क़ज़ाए उम्री पूरी करना, अगर कभी नमाजें रह गई हों तो। फिर जो है वो बुज़ुर्गों की सोहबत के अनवारात, बरकतें मिलती हैं आदमी को। ये तो पहला सिलसिला है कि यहाँ से तौबा से शुरू हुआ। और इसमें बैत होना ज़रूरी नहीं है, इसमें किसी से सिर्फ इस्लाही ताल्लुक़ ये हो जो कि नफ्स की इस्लाह के वास्ते हो। और सीखने की सलाहियत तालिब इल्म और स्टूडेंट के अपने अंदर होती है, जिसके अंदर जितनी सलाहियत होगी वो तरक्की करेगा। और ये बात उस्ताद की काबिलियत पे नहीं है कि शेख कितना ऊंचा है, इस पे नहीं है, बल्कि तालिब इल्म में कितनी सलाहियत है उसके बकदर वो तरक्की करे। तो उसमें होता यह है कि उनसे इस्लाही ताल्लुक होता है, खत व किताबत, उनके पास अपने अहवाल बयान किए जाते हैं, तौबा की तकमील होती है, अपना बैकग्राउंड और इल्मी पस मंज़र बयान किया जाता है, और अपने दावती काम और रोज़ाना का शेड्यूल बताया जाता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, और नफ्स और शैतान की कोई शरारत है वो बताई जाती है कि भाई मेरे अंदर कोई बुरे अखलाक तो नहीं, मेरे अंदर कोई प्राइड, एरोगेंस तो नहीं, हिर्स और ग्रीड तो नहीं, और अपने घर में और ख़ानदान में कोई हुकूक़ किसी के अदा करने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। इस तरह से अपने ऊपर मुकदमे कायम करके कि मुझसे फ़लाँ फ़लाँ गलती और कोताही हो रही है, ऐसा लगता है मुझे, तो शेख से राबता किया जाता है कि उसके ऐसे सिम्टम्स हैं, फ़लाँ वक्त ऐसा हुआ, मैंने ये किया। तो अब जो है फिर शेख, उस्ताद, आप मेंटर, वो बताते हैं कि नहीं ये बात इस तरह से है, उनको तजुर्बा होता है। और इस तरह किसी को इबादत में सुस्ती काहली होती है, और बहुत सारे काम हैं, नफली इबादत हैं, दावत का अमल है, और नए मुसलमानों में काम है, और खैराती काम है, खिदमत खल के काम है, मस्जिद में काम है, वॉलेंटियर काम है, तो पचासों काम इस तरह हैं। मुझको मेरी सलाहियत के हिसाब से किस काम में कितना वक्त देना, ये भी किसी शेख से पूछ कर करना चाहिए। नूरुन अला नूर होता है। फिर रोज़ाना के मामूलात क्या होते हैं, किस वक्त जिक्र तिलावत हो, क्या चीज़ हो, मज़ीद नफलें पढ़ी जाएँ, किस आदमी के लिए नफलों में मेहनत करना ज़्यादा है, तहज्जुद ज़्यादा पढ़े, कौन सा आदमी को मशगूल है पढ़ने पढ़ाने में, दावत तबलीग में, तो उसको कहाँ पर क्या चीज़ शेड्यूल में कमी की जाए। तो अपनी खुद राय से नहीं करना है कि मैं समझ लिया, मैं बहुत फ़ायदा खुद मुझको मालूम है, उसमें गिर जाता है। उसकी मिसाल पिछली दफ़ा बताई गई थी कि एक रास्ता है जो पुरखतर है, उसमें अंधेरा है, रास्ते में अंधेरा है और ज़मीन स्लिपरी है, फिसलने वाली है, और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर गफलत की ख्वाहिशात की पट्टी बंधी हुई है, रास्ते में ये डार्क है और स्लिपरी है, और इन सब के बावजूद पीछे से कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है कि जल्दी जाओ, तो अब क्या हाल हो। तो ऐसे माहौल में आदमी अपने आप को समझ कर हमेशा पूछ पूछ कर डर डर कर मशवरे इस्तेखारे से चला गया। जो ये समझा कि अब मुझको सब समझ में आ गया तो वहीं से गिर जाता, जो समझा कि मैं बहुत काबिल हो गया वहीं से शैतान गिरा देता। इसलिए इस रास्ते में शेख की ज़रूरत होती है। फिर हर वक्त दुआएं, अच्छी जिक्र, अच्छा नियतें अपने पास हो, किताबें पढ़ने, बयानात सुनने का मामूल हो, तो ये सारी चीज़ें, ये ज़रूरत होती है आदमी को कि दीन पर कामिल अमल करने के वास्ते किसी बुजुर्गों के सोबत में उनसे पूछ कर चले। हज़रत शेख रज़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने एक रिसाला लिखा कि अच्छी सोहबत के असरात, उसमें कुछ कुरान की आयतें हजरत ने नकल फरमाई कि इन पर गौर किया जाए। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा, मत कहना मानो उसका जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है और जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है, ऐसे आदमी का मत कहना मानो। और दूसरी आयत नकल फरमाई, फ़अअरिद़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, भागो उससे जो हमारी याद से मुंह मोड़े हुए है और सिर्फ दुनिया की जिंदगी का तालिब है, ऐसे आदमी के पास मत बैठो। और किसके पास बैठो, कुरान शरीफ में फरमाया, वत्तबे सबील मन अनाब इलई, वत्तबे सबील मन अनाब इलई, उसका हम सफर बनो जो मेरी तरफ रुजू करता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, जो आदमी मेरी तरफ चलकर आ रहा है उसके साथ साथ चलो, उसके हम सफर बन जाओ। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ सखरवी साहब दामत बरकातहुम, उनकी रिसाला है रोज़ाना के मामूलात। हज़रत ने लिखा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर अपने जाहिर और बातिन की इसलाह फ़र्ज़ आयन है, और आगे उसके लिए हज़रत ने फरमाया कि इसलाह का तरीक़ा ये है कि शरीयत की पाबंदी करने वाले, सुन्नतों पर अमल करने वाले किसी ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्ग जो किसी से इजाज़त हो उनको, और उनके पास बैठने बातें सुनने से आखरत की फिक्र बढ़ती हो, दुनिया की मोहब्बत कम होती हो और आपको उससे मुनासबत हो, उनसे इस्लाही राबता कायम किया करें। और मुनासबत का मतलब है कि उनकी सब बातें आपको पसंद हो, उनके किसी बात पर या अमल पर आपके दिल में एतराज़ ना हो, और उनको भी आपसे दीनी मोहब्बत हो, ये मुनासबत ज़रूरी है। जब ऐसे अहलुल्ला शेख मिल जाएं तो अपना उनको कोई हाल हो उनसे ना छुपाएं, उनसे लिखकर उनकी खिदमत में पेश करें, और जो वो बताएं एडवाइस, तालीम, नसीहत, उस पर दिलो जान से अमल करें। ये जो है हमारे बुजुर्गों ने ये सब बातें बताई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद मिनट में ये, चूँकि अशरा ज़िलहज्जा शुरू हो रहा है और उसके अमाल हैं, तो ये अर्ज़ किया जाता है, खुतबातुल अहकाम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर अहादीस शरीफ नकल फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन अशरा ज़िलहिज्जा के अलावा ऐसा नहीं कि उनमें इबादत करना अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद हो। यानी साल का कोई और दिन ज़्यादा पसंद नहीं, ज़िलहिज्जा ज़्यादा पसंद है। उनमें से एक दिन रोज़ा रखना एक साल रोज़ा रखने के बराबर है। यानी पहली तारीख से 8 तारीख तक एक दिन का रोज़ा एक साल रोज़ा रखने के बराबर है। और हर रात का जागना शबे कदर के जागने के बराबर है। हर रात का जागना शबे कदर के जागने के बराबर है। ये रिवायत तिर्मिजी शरीफ और इब्ने माजा में है। और मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अरफा का रोज़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा कफारा हो जाता है पिछले साल और आइंदा साल का, यानी सगीरा गुनाह पिछले साल और आइंदा साल के माफ़ हो जाते हैं ये एक दिन रोज़ा रख लेने से। अल्लाह, और तरगीब की एक रवायत में जो बैहकी की किताब से लिखी गई उसमें लिखा है कि अरफा का रोज़ा 1,000 रोज़े के बराबर है। और तरगीब की एक और रिवायत में है कि जिसने अरफा का रोज़ा रखा 9 ज़िलहिज्जा का उसके पै दर पै 2 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। फिर फरमाया दुर्रे मंसूर और बैहकी की रवायत है कि न कोई दिन अल्लाह के नज़दीक अफजल है इस अशरा ज़ुलहिज्जा से और न किसी और दिन में अमल करना इनमें अमल करने से अफजल है, बस खसूसियत से कसरत रखो उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, क्योंकि ये तहलील और तकबीर और अल्लाह के जिक्र के दिन हैं, ये तहलील और तकबीर और अल्लाह के जिक्र के दिन हैं। अल्लाह जी अशरे ज़िलहिज्जा के फ़ज़ाइल मसाइल कुर्बानी के और इन चीज़ों के इनको पढ़ा जाए और इनका मुज़ाकरा किया जाए अपने अपनी मस्जिदों में कम्युनिटी में ताकि लोग और हम सब अल्लाह की याद में लग जाएं। आखिर में एक किस्सा तौबा का और आखिरत का बताकर दुआ होगी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रहमान रहीम की तफसीर में एक किस्सा लिखा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि फ़लाँ आदमी को ले आओ, उसका मुकदमा पेश करो। तो फरिश्ते उसके पास जाएंगे और कहेंगे आपकी पेशी है, आ जाइए। तो वो कहेगा मैं तो अपना अंजाम जानता हूँ, मैंने सारी उम्र में कोई नेकी का काम नहीं किया, अब मैं कोर्ट में जा रहा हूँ अल्लाह के, उनको सब मालूम है, मेरे मुकदमे में तो कोई जान ही नहीं है, पहले से मायूस हूँ। अब वो बंदा अल्लाह के दरबार में आया, अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़लाँ बिन फ़लाँ ना बिन फला अब ये परेशान है मेरे साथ क्या मामला होता है। तो अल्लाह ने इस आदमी से फरमाएंगे कि हमने तुम्हारी एक नेकी की बदौलत तुमको बख्श दिया, इस पर खास रहमत का मामला होगा। तो ये हुक्म सुनकर वो बंदा गुनहगार बड़ा हैरान होगा, कहेगा अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बख्शिश के काबिल भी नहीं, तो मुझे बताइए कौन सी नेकी थी जिसको आप खुश हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको वो रात याद नहीं एक दफा आधी रात को तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने करवट बदलते हुए कहा था अल्लाह, एक दफा तुम्हारी आंख खुल गई थी रात में और तुमने करवट बदलते हुए हमको पुकारा था और उस रात में तुमने जितने इखलास के साथ ये लफ्ज कहा था अल्लाह हमको इतना पसंद आया कि तुमको बख्श दिया। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। आदमी कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, काम खूब करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी बहुत हो। दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांग लीजिए अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने ख़ानदानों बुजुर्गों की तमाम हाजात के लिए और सदका जारिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اے اللہ آپ کے لیے سارا شکر ہے، اے اللہ سارا ملک آپ کا ہے اور ساری مخلوق آپ کی ہے، اے اللہ سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں بھلائی نیکی ساری کی ساری اور پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تمام برائیوں سے پناہ دے دیجئے، اے اللہ ہمیشہ رہنے والا ایمان دے دیجئے، اے اللہ عاجزی کرنے والے دل دے دیجئے، اے اللہ ہمیشہ کا چین اور سکون دے دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں سب سے اچھا سوال اور سب سے اچھی دعا اور عمدہ سے عمدہ کامیابی اور سب سے اچھی زندگی اور سب سے اچھی موت، اے اللہ ہمارے سب کاموں کو درست فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، اے اللہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں شکر کی توفیق عطا دے دیجئے، اے اللہ ہماری زبان کی غلط بول اور دل کی غلط سوچ کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ہر حرکت اور عمل اپنی رضا اور خوشی کے مطابق کر دیجئے، اے اللہ ہر عمل میں سچائی اور اخلاص ڈال دیجئے، اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ 100% دین ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، شہروں و ملکوں میں جاری فرما دیجئے، اے اللہ ایک ایک سنت زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور یاد کے لیے، شکر کے لیے، اچھی نیتوں کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ ہم میں سے حاضرین حضرات جہاں جہاں بھی ہوں ان کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں اے اللہ، تمنائیں اور مشکلات ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات کو غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ جن جن گھروں میں لوگ بیمار ہیں، ہمارے بزرگ بیمار ہیں، اے اللہ صحت کاملہ، شفائے کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ دین کے کاموں مشغول ہیں، دعوت میں اور علم دین سیکھنے سکھانے میں، اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ جان و مال و وقت میں برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ علم میں ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت کو بخشش فرما دیجئے، اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی پریشانی کو خوشی سے بدل دیجئے، اے اللہ پوری امت کو آسان رزق حیات طیبہ عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے لوگ، لاکھوں لوگ حج کو عمرے کو جا رہے ہیں، اے اللہ حرمین شریفین میں طواف ہو رہا ہے، روضہ مبارک میں سلام پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے سفر کو، تمام مناسک اور تمام آداب، ہر چیز عبادات کو اے اللہ آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، اے اللہ وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، جو نیکیاں ان کو مل رہی ہیں، رحمتیں، اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں حج اور عمرے میں اور رمضان میں، اور حج اور منا میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور حرمین شریفین میں، روضہ مبارک میں، اے اللہ مساجد میں آپ کی جتنی رحمتیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.